चूंकि आज का हमारा टॉपिक सल्तनत सुलेमानी है, तो हमने कुरान से हज़रत सुलेमान का एक किस्सा जो सूरह नमल सूरह नंबर 27 में जो जिक्र है हमने उसको पढ़ा। किस्सा इससे भी आगे जाता है और भी इसमें कुछ पहलू हैं, लेकिन हम उसका वो पहलू कवर करेंगे जो इब्तिदान हमारे समझने के लिए आसान हो, और ये कि जिसका ताल्लुक हम अच्छी तरह से जो बातें हमारे नॉलेज में ऑलरेडी हैं उनके साथ भी कर सकें। तो आप देखते हैं कि किस्सा ये है कि हज़रत दाऊद अलैहि सलाम एक पैगंबर हैं। हज़रत दाऊद की तारीफ ये है कि उन पर ज़बूर नाजिल हुई, और आपको ये मालूम होगा कि ज़बूर एक बहुत स्पेशल किताब है। ज़बूर में कुरान और बाइबल और तौरेत की तरह कमांड्स नहीं हैं, बल्कि उसमें हज़रत दाऊद खुदा से बातें करते हैं। यहाँ तक भी है कि मैं म्यूज़िक बजाते हुए तुझको याद करूँगा, मैं रक्स करते हुए तुझको याद करूँगा, मुनाजात है। ये चार किताबों में से ये एक ही किताब है जिसमें खुदा और बंदे की गुफ्तगू है, और उस किताब को भी आसमानी किताब कहा गया है। ये इश्क की किताब है, गिरियाउजारी की किताब है और मुनाजात की किताब है। तो हज़रत दाऊद की ये तारीफ है कि उसकी किताब जो है वो मुनाजात की किताब है। कभी कभार उसमें से कुछ पढ़ना शायद हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि हमें समझ में आए कि खुदा के एक पैगंबर पर ऐसी किताब भी नाजिल हो सकती है जो प्योर गिरियाउजारी हो और बंदे और खुदा की गुफ्तगू हो। हज़रत दाऊद इतने बड़े पैगंबर थे, इनकी बहुत सारी तारीफ़ें हैं, कुछ मौजज़ात भी उनके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन यहाँ चूंकि टॉपिक हज़रत सुलेमान और उनकी सल्तनत है, हज़रत सुलेमान उनके फ़र्जंद थे, उनके बेटे थे, और कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी सल्तनत थी। उनकी सल्तनत में जिन्नात उनके लिए काम करते थे, बड़ी बड़ी देगों में खाना पकाते थे, आनन फानन किसी मुल्क से किसी मलिका का तख्त लाकर सुलेमान के लिए हाजिर कर देते थे, और सुलेमान के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते थे। ये ज़ाहरी किस्सा है, और किस्से का जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा, तो उन दोनों ने कहा कि शुक्र है कि हमें बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी गई। यानी इल्म हासिल हो तो शुक्र करना है, तो दाऊद और सुलेमान ने कहा कि शुक्र है कि हमें बहुत से बंदों पर खुदा ने फजीलत दी। सुलेमान को दाऊद का कायम मुकाम बनाया, यानी दाऊद की कोई हैसियत थी और फिर वो स्टेटस वो जगह सुलेमान को दे दी गई। ये एक पॉइंट है जिसे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और उन दोनों ने कहा, सुलेमान ने कहा कि ए लोगो, हमें जानवरों की बोली सिखाई गई है, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, क्योंकि हज़रत सुलेमान का एक लश्कर था, उसमें परिंदे थे, इंसान थे और जिन्नात थे। तो कहते हैं हज़रत सुलेमान अपने इस लश्कर के साथ काम करते थे। तो हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है जो खुदा की तरफ से एक इनायत है, और ये उसका एक वाज़े फ़जल है। और सुलेमान के लिए जिन्नात, इंसानों और परिंदों का लश्कर जमा किया गया, और वो किस्मवार था, यानी सही तकसीम किया हुआ था, और वो अपना अपना काम करता था। फिर हज़रत सुलेमान एक मर्तबा कहीं पर सफ़र कर रहे थे तो चूंटियों के मैदान में पहुँचे, वादी नमल के, चूंटियों की वादी में पहुँचे। इस कुरान के इस चैप्टर का नाम है नमल, चूंटी। कुरान के कुछ चैप्टर्स का नाम जानवरों के नाम पर है, सूरह फील हाथी के नाम पे, सूरह बकरा बैल के नाम पे है, सूरह नमल चूंटी के नाम पे है, सूरह अनकबूत मकरी के नाम पर है। तो यहाँ पर कहा गया कि चूंटियों की वादी में जब पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा कि ऐ चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुमको कुचल के चला जाए। तो सुलेमान इस बात पर हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है उसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूँ। तो हज़रत दाऊद और उनकी फैमिली के लिए जो जो एहसानात खुदा ने किए हैं उनका शुक्र अदा करें, और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे राज़ी हो जाए और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में दाखिल फरमा दे। फिर जब उन्होंने जानवरों का जायज़ा लिया तो पुप्पो उनको नज़र नहीं आया, एक परिंदा हुदहुद कहते हैं, पुप्पो वो उनको नज़र नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वो किधर गया है, थोड़ी देर में हुदहुद आ गया, और हुदहुद ने कहा मैं आपके लिए एक ख़बर लाया हूँ, और ख़बर ये है कि मुल्क के सबा में एक मलिका हुकूमत कर रही है, वो काफिर मलिका है और उसके लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, तो लेकिन उसका एक बहुत बड़ा अर्श है, अर्श अजीम कहा उसको। खुदा कहता है कि लोग नहीं समझते हैं और अच्छे अमाल नहीं करते हैं, खुदा उनके अमाल को जानता है, तो वो खुदा को सजदा क्यों नहीं करते हैं, जबकि खुदा इबादत के लायक है और उसी का अर्श अजीम है। फिर कहते हैं कि सुलेमान खत भेजता है उस मलिका को, मलिका उस खत का जवाब देती है, फिर सुलेमान अपने एक जिन के ज़रिए से उस मलिका को उसके तख्त समेत अपने महल में ले आता है। तो ये कुरान का ज़ाहिरी किस्सा है, बड़ा अजीब व गरीब किस्सा है, चूँकि तमाम किस्से का एक तावील होती है, एक बातिनी मतलब होता है, तो हमें इस किस्से को भी समझना है। और तमाम किस्से ज़माने के इमाम से रिलेटेड हैं। इसकी कुरान के किस्सों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तमाम किस्से ज़माने के इमाम से रिलेटेड हैं। मौला मुर्तज़ा अली ने फरमाया कि पूरा कुरान हमारी शान में नाजिल हुआ है, और कुरान के गोया चार हिस्से मौला ने बयान किए कि कुरान में जो हमारी तारीफ़ है वो तो हमारे लिए ही है, जो हमारे दुश्मनों की मजम्मत है वो भी हमारी तारीफ़ है। अगर अली के दुश्मन की मजम्मत है तो वो भी अली की तारीफ़ है। तो जैसे अबू लहब जो कि रसूल सल्लम के साथ दुश्मनी करता था, हालांकि उनकी फैमिली का था, तो खुदा ने कुरान में कहा है अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, तो ये अबू लहब की मजम्मत है, अबू लहब को बुरा भला कहा है। तो अगर अली के दुश्मन को बुरा कहा है वो भी अली की तारीफ़ है। एक तो अली की डायरेक्ट तारीफ़ है, एक अली की इनडायरेक्ट तारीफ़ है। और फिर मौला अली फरमाते हैं तीसरे में अहकाम है, अहकाम यानी कमांड्स हैं, ए रसूल कह दो, ठीक है, ए मोमिनो ये करो। तो मौला अली फरमाते हैं वो कमांड्स भी हमारे ज़रिए से जारी होती हैं। जैसे रसूल को कहा गया ए रसूल कह दो, रसूल तो 63 साल की ज़िंदगी के बाद चले गए, तो अब वो कहने का अमल कौन करेगा? रसूल 63 ईयर्स के बाद दुनिया से चले गए और रिसालत का एक टाइम पूरा करके दुनिया से चले गए, मगर कुरान अब भी कहता है कुल कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हु अल्लाहु अहद, ए रसूल कह दो। तो रसूल कैसे कहेगा, अब रसूल नहीं है। तो ये जब ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर में था ए रसूल अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़बान से और अपने बाद अपनी आल के इमामों के ज़रिए से क़ियामत तक के लोगों से कह दो, तो मतलब ये कहने का अमल सही होगा ना, वरना ए रसूल तुम कह दो और रसूल चले गए उसके बाद ये हुक्म कौन पूरा करेगा। और जैसे कुरान में एक जगह पर है रसूल से कहा गया खुज़ मिन अमवाली सदका, ए रसूल इनके मालों में से सदका ले लो, तो रसूल चले गए अब मालों में से सदका कौन लेगा, तो ये हुक्म जो है वो अली और उसकी औलाद पूरा करेगी ना। तो मौला अली फरमाते हैं कुरान के चार हिस्से हैं और वो चारों के चार हमारी शान में हैं। एक हिस्से में हमारी तारीफ़ है वो हमारी ही तारीफ़ है, दूसरे हिस्सों में हमारे दुश्मनों को बुरा कहा गया है वो भी हमारी तारीफ़ है, तीसरे हिस्से में कमांड्स हैं ये करो वो नहीं करो ये भी हमारे ज़रिए से जारी होंगे, रसूल के बाद किसके ज़रिए से जारी होंगे, और चौथे हिस्से में किस्से हैं कसस हैं उनमें भी हमारा राज है, मतलब जिस्ट है ये मौला अली के फरमान का। तो जो भी किस्सा है वो मौला अली और उसकी औलाद से रिलेटेड है, इसलिए वो किस्सा हम इस्माइली जमात को समझना, उसकी तावील को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो कुरान में बादशाहत का एक टॉपिक है कि सुलेमान की सल्तनत थी, सुलेमान एक बादशाह था। अजीब बात है कि जो दुनिया के बादशाह थे खुदा ने उनको बादशाह नहीं कहा। कुरान में नमरूद का नाम बादशाह नहीं है, फिरौन का नाम बादशाह नहीं है, किसी कैसर व कसरा, ये भी ईरान में बादशाहों के नाम होते थे, किसी कैसर व कसरा का नाम बादशाह कुरान में नहीं है। कुरान ने किसी को बादशाह नहीं कहा, दुनिया जिनको बादशाह कहती थी कुरान ने उनको बादशाह नहीं कहा। कुरान ने किसको बादशाह कहा, खुदा को बादशाह कहा, बल्कि खुदा को शाहिनशाह कहा। एम्परर जो होता है वो एक नॉर्मल किंग से ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, उसको शाहिनशाह कहते हैं। शाहिनशाह के नीचे बहुत सारे बादशाह हो सकते हैं, बादशाह छोटा होता है, शाहिनशाह उससे बड़ा होता है, क्योंकि वो बहुत से बादशाहों का इंचार्ज होता है। खुदा ने अपने आप को बादशाह बल्कि शाहिनशाह कहा, और अरबी में शाहिनशाह को मलिक कहते हैं। एक तो मलिक है बादशाह, मलिक शाहिनशाह बादशाह बनाने वाला, हाँ एक बादशाह होता है एक शाहिनशाह होता है जो बादशाहों को मुकर्रर करता है। तो खुदा का टाइटल कुरान में है मलिक यानी बादशाह बनाने वाला, वो न सिर्फ बादशाह है बल्कि बादशाह बनाने वाला भी है। तो खुदा ने कुरान में किसी को बादशाह नहीं कहा बल्कि सिर्फ अपने आप को बादशाह कहा या फिर पैगंबर सुलेमान की तारीफ़ की है कि उसके पास सल्तनत थी, उसके पास हुकूमत थी। अब ये भी ज़रूरी तौर पर हमको समझना है कि इमाम के पास जब भी कोई पैगंबर की कोई सिफत बयान होती है तो वो हकीकत में सारे पैगंबरों और सारे इमामों की सिफत होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही पैगंबर की सिफत हो और इसके बाद किसी पैगंबर की सिफत ना हो। मिसाल के तौर पर शायद इससे पहले भी हमने मुख्तसर बात की थी कि आदम के लिए कहा गया, आदम का टाइटल है सफ़ीउल्लाह, खुदा की तरफ से सिलेक्टेड, खुदा की तरफ से ख़ास चुना हुआ। तो सिर्फ आदम तो चुना हुआ नहीं था, नूह भी चुना हुआ था, इब्राहिम भी चुना हुआ था। खुद खुदा कुरान की एक आयत में फरमाता है, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहा व आला इब्राहिमा व आला इमरान, खुदा ने मुंतखब किया, चूज़ किया आदम को, नूह को, इब्राहिम की आल को और इमरान की आल को। यानी खुदा चूज़ करने के लिए लोगों के नाम लेता है। तो सिर्फ आदम चोज़न नहीं था, तमाम पैगंबर चोज़न थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का नाम ही मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का मतलब भी है द चोज़न वन। तो आदम का नाम सफ़ीउल्ला, टाइटल सफ़ीउल्ला, मुस्तफ़ा का नाम मुस्तफ़ा, वो भी चोज़न वन है। फिर हज़रत नूह का नाम है, टाइटल है नजीउल्ला, जिसको खुदा ने नजात दी, सल्वेशन दी, ठीक है। उसको कहते हैं ना, वो तूफ़ान में गिरफ्तार हो गए थे, तूफ़ान से उनको नजात दी, उसकी भी एक तावील है। तो तमाम पैगंबरों को खुदा ने नजात दी है। फिर इब्राहिम का टाइटल है खलीलुल्लाह, खुदा का दोस्त, तो सारे ही पैगंबर खुदा के दोस्त होते थे। मूसा का नाम है कलीमुल्लाह, खुदा से बातें करने वाला। क्या सिर्फ मूसा खुदा से बातें करता था? सारे पैगंबर खुदा से बातें करते थे। तो मूसा का नाम सारे पैगंबरों में मुश्तरक था। इस्माइल का नाम था ज़बीहुल्लाह, खुदा की राह में ज़िबा किया गया, उनको कुर्बान किया गया था, ठीक है, सिम्बोलिकली कुर्बान किया गया था। फिर खुदा ने उसकी जगह पर एक दुम्बे को लाके कुर्बान कर दिया था। यह आपने किस्सा सुना होगा कि हज़रत इब्राहिम को हुक्म हुआ था कि अपने फ़र्जंद को कुर्बान कर दो। तो इस्माइल का टाइटल है ज़बीहुल्लाह, लेकिन इस्माइल अकेला कुर्बान नहीं हुआ था, सारे पैगंबर उस कुर्बानी से गुजरते हैं। और इसी तरह से बाकी पैगंबरों के जो भी नाम है, जैसे हज़रत ईसा का नाम है रूहुल्ला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का नाम भी हबीबुल्ला, खुदा का दोस्त। तो आप देखें, ये रूहानियत सारे पैगंबरों में कॉमन होती है। इमाम पैगंबर का वारिस है, तो जो वारिस होता है उसको विरासत मिलती है। जो पैगंबरों की विरासत थी, मौजजात की, टाइटल्स की, वो तमाम विरासत फिर इमामों को मिलती है। एक पैगंबर का जो किस्सा होता है वो उस पैगंबर तक महदूद नहीं होता है। अब आप देखें, आदम को खलीफा कहा गया, खलीफा का मतलब भी तो एक किस्म का बादशाह ही था ना, यानी तमाम मोमिनीन पर उसको इंचार्ज बनाया गया था। खुद हज़रत दाऊद का टाइटल है खलीफा और सुलेमान का टाइटल है बादशाह, क्योंकि सुलेमान के पास, तो हो सकता है कि हज़रत सुलेमान के पास ज़ाहिर में भी कोई सल्तनत हो। पैगंबरों और इमामों के पास ज़ाहिर में सल्तनत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमारे इमामों के पास फ़ातिमी दौर में सल्तनत थी, आलमोत दौर में सल्तनत थी, अब नहीं है। मगर इमाम पहले भी बादशाह था, अब भी बादशाह है, बल्कि शहंशाह है। इमाम के शहंशाह होने का ताल्लुक सल्तनत के होने या नहीं होने से नहीं है। वो रूहानी तौर पर एक मलिक है, एक शहंशाह है, एक बादशाह है। तो मैं पॉइंट ये बना रही हूँ कि सिर्फ हज़रत सुलेमान शहंशाह था, ऐसा नहीं है। हर पैगंबर बादशाह था, हर इमाम बादशाह है। और हज़रत सुलेमान की सल्तनत का जो किस्सा है वो इमाम की बादशाही का किस्सा है कि इमाम किस मानों में बादशाह होता है और एक बादशाह के पास क्या क्या होता है। बैतुल ख्याल के मोमिनीन के लिए इमाम ने लश्कर का लफ्ज़ यूज़ किया या नहीं किया है? लश्कर किसका होता है? किसी बादशाह का होता है, किसी जर्नेल का होता है। अगर इमाम का लश्कर है, इसका मतलब इमाम बादशाह है। गिनानों में है, तबल बजेगा, नकारा डोल बजेगा, ये किसके लिए बजता है? बादशाह के लिए बजता है या फौज के इंचार्ज के लिए बजता है? तो अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो फिर लश्कर है और इमाम जो है वो बादशाह है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो इसी से मुतालिक है। तो अब कहा गया सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ, इसका मतलब बादशाहत दाऊद के पास भी थी, तभी तो सुलेमान को मिली ना। ये कुरान की वो आयत है जो हमने अभी अभी पढ़ी, वह वरिसा सुलेमानु दाऊदा, सुलेमान दाऊद का वारिस बना। तो दाऊद के पास जो कुछ था वो सुलेमान को मिला रूहानी तौर पर, ठीक है। हो सकता है दाऊद की कोई ज़ाहरी जायदाद भी हो, वो भी मिली हो उसको, चूंकि वो उसका फर्जंद था। मगर यहाँ जिस चीज़ की तरफ इशारा है वो रूहानी सल्तनत, रूहानी विरासत जो कि सुलेमान को अपने फादर से मिली। अब इस रूहानी सल्तनत में क्या क्या था, कहते हैं कि इस रूहानी सल्तनत में मतलब जो आप खूबियाँ बता रहे हैं, क्या खूबी थी? परिंदों की बोली सिखाई गई सुलेमान को। सुलेमान का एक लश्कर था जिसमें परिंदे थे, इंसान थे और जिन थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ज़ाहरी लश्कर हो जिसमें परिंदे हों, इंसान हो और जिन हो। परिंदे इंसान को देखकर उड़ जाएंगे और इंसान जिन्नात को देखकर भाग जाएंगे। एक लश्कर में ये तीन चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? परिंदे भी थे, इंसान भी थे और जिन भी थे। तो ये उनकी एक खूबी थी। फिर ये था कि वो चूंटियों की वादी से गुजरते हैं तो चूंटियाँ डरती हैं कि भाई ये हमें कुचल देंगे। ये भी एक मुजज़ा है जिसकी तावील है। मतलब इमाम को वक्त का बादशाह तस्लीम करना और हज़रत सुलेमान के तमाम मौजज़ात को इमाम से मंसूब करना, क्योंकि कुरान के तमाम किस्से अली से मंसूब हैं। जैसे मौला अली ने फरमाया कि कुरान पूरे का पूरा मेरी शान में नाजिल हुआ है। जो मेरी तारीफ़ है वो मेरी तारीफ़ है, मेरे दुश्मनों की मजम्मत है वो भी मेरी तारीफ़ है, जो हुक्म है वो भी मेरी वजह से चलेगा और जो किस्से हैं उसमें भी मेरा राज है। तो फिर इस किस्से में भी मौला मुर्तज़ा अली और उसकी औलाद का राज है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सल्तनत सुलेमानी के पास क्या क्या था। फिर वो किसी काफिर का तख्त लाकर अपने महल में ला सकता है, अचानक उसको ग्रैब करके अपने महल में ला सकता है। ये हज़रत सुलेमान के मौजज़ात हैं। मौजज़ात और भी आगे हैं लेकिन हम इतने को समझने की कोशिश करेंगे। अब सुलेमान जो हैं वो पैगंबर भी हैं और इमाम भी हैं। आपको मालूम है कि कुछ पैगंबरों के साथ इमाम का लफ्ज़ भी हमारी तारीख़ में इस्तेमाल हुआ है, जिसे खुद इब्राहिम के लिए कुरान में खुदा कहता है कि ए इब्राहिम हमने तुमको लोगों का इमाम बनाया, जाइलू का इमामन लिन्नास, तुमको तमाम लोगों का इमाम बनाया। तो कुछ पैगंबरों के पास पैगंबर का भी टाइटल था, इमाम का भी टाइटल था। इस पर हम कभी गुफ्तगू कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये था कि सुलेमान इमाम भी था, वो पैगंबर भी था और उसके पास एक सल्तनत थी, एक बादशाहत थी। अब इस बादशाहत में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी उसको हम एक एक करके देखते हैं। लश्कर, सुलेमान का लश्कर, चूँकि आपको इल्म हासिल करने का शौक़ है, एक मरहला जो हर पैगंबर और हर इमाम की ज़िंदगी से गुज़रता है उसको समझने की ज़रूरत होगी, और वो मरहला होता है तस्खीरे कायनात, यानी पूरी पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने का मरहला होता है। जब पैगंबर पर मूतू कबला अन तमूतू का स्टेज गुजरता है, हर पैगंबर को मारिफत मिलती है, हर पैगंबर मेराज पे जाता है, चूँकि हर पैगंबर खुदा को पहचानता है। हज़रत मूसा जब कोहे तूर पर गए थे तो उन्होंने भी खुदा से कलाम किया, खुदा का जलवा देखा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज पे गए। हर पैगंबर के किस्से में अलग अलग तरीके से बयान किया गया है कि वो किस तरह एक एलिवेटेड दर्जे पे पहुंचा था। तो हर पैगंबर मूतू कबला अन तमूतू के स्टेज से गुजरता है कि मरने से पहले मरो। मरने से पहले कैसे मरते हैं? तो हमारे इस्माइली बुज़ुर्गों ने बयान किया है कि मरने से पहले मरने का मतलब ये है कि गिरिया होजारी जब बहुत इंटेंस होती है, आपका जिब्राइल ज़िंदा, कल हमने बात की है राइट, आपका जिब्राइल ज़िंदा हो चुका है, आपका मीकाइल पूरी तरह से काम कर रहा है, आपका इसराफील ज़िंदा होता है। तो कहते हैं कि कयामत, अगर कोई मौत से गुजरेगा तो क्या देखेगा? कयामत देखेगा ना, क्योंकि मौत के बाद ज़ाहरी किस्से में है कि मौत के बाद हम कयामत से गुजरते हैं। तो हमारे एक बुज़ुर्ग शायर कहते हैं कि इश्क दीदा सद कयामत, अस कयामत पेशतर, अस तू हर दम सद कयामत, नूर मौलाना करीम। कि इश्क ने तो कयामत से पहले 100 कयामतें देख ली, और ए नूर मौलाना करीम तेरे दम से हर वक्त दुनिया में एक कयामत है। कयामत इस्माइलियों के नज़दीक कयामत कोई एक दिन का वाकया नहीं है कि उस दिन अचानक पहाड़ों को जलजला आ जाएगा और ज़मीन हिलने लगेगी और तमाम चीज़ें, कब्रों से लोग खड़े हो जाएंगे और लाइन बना कर जाएंगे। हमारे नज़दीक क़ियामत रूहानी है, और रूहानी क़ियामत क्या है? क़ियामत का एक दौर होगा, जैसे मारिफत का दौर हम कहते हैं, शरीयत तरीक़त हकीकत और मारिफत। तो जो मारिफत का दौर आएगा उसी को दौरे क़ियामत भी कहा गया है। जब कोई मोमिन मूतू कबला अन तमूतू से गुज़रता है तो वो क़ियामत से गुज़रता है, और क़ियामत से गुज़रने की सूरत में उस पर कुछ मौजज़ात होते हैं। उसमें से एक मौजज़ा ये होता है कि दुनिया भर की रूहें पार्टिकल्स की सूरत में उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। दुनिया भर के तमाम एग्जिस्टेंस एक पार्टिकल बनकर आते हैं और उसकी हस्ती में दाखिल हो जाते हैं। इस माना में वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेता है, पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाती है। एक तासुर है ना, जब कहा गया कि दुनिया आलम कबीर है, मैक्रोकॉजम है और तुम माइक्रोकॉजम हो, और यहाँ पे पोटेंशियल एक एक गवर्नमेंट है, एक सल्तनत है, इसको एक्चुअलाइज करना है। मतलब कुरान में खुदा बार बार कहता है कि हमने तुम्हारे लिए आसमान को भी मुसख़्क़र कर दिया, ज़मीन को भी मुसख़्क़र कर दिया, दुनिया की तमाम चीज़ें, पहाड़ तुम्हारे लिए मुसख़्क़र कर दिए। तो एक मोमिन के लिए सब चीज़ें मुसख़्क़र तो नहीं है, आप किसी भी पहाड़ पर जाकर बैठकर अपना घर तो नहीं बना सकते, वो आपके लिए मुसख़्क़र नहीं है, वो किसी कंट्री की टेरिटरी है, किसी मुल्क की मिल्कियत है, आपकी नहीं है। लेकिन खुदा कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ मुसख़्क़र कर दिया, ज़मीन में है वो भी तुम्हारा है, आसमान में है वो भी तुम्हारा है। तो मोमिन सवाल तो करेगा ना कि या मौला कहाँ है मेरा, किस तरह मेरा है? रूहानियत में वो आपका है, क्योंकि अगर कोई मोमिन कयामत से गुजरता है तो ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें ज़र्रे की सूरत में आकर उस मोमिन को सजदा करती हैं, ज़र्रे की सूरत में उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। वो कयामत से गुजरता है और उसके बाद वो पूरी कायनात को, पूरी कायनात उसकी हो जाती है, पूरी कायनात को उसने मुसख़्क़र कर दिया। वरना ये बात अजीब होगी कि खुदा कुरान में कहे कि मैंने ज़मीन आसमान में जो कुछ है सब तुमको दे दिया, और हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो, ना ज़मीन की चीज़ें हमारे पास हो, ना आसमान की चीज़ें हों। तो अगर खुदा फरमाता है कि तुमको सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब वो सब कुछ देने का कोई मकाम तो होगा ना, कोई जगह होगी, कोई मरहला होगा, कोई प्रोसीजर होगा जिसमें खुदा ये सब कुछ हमको देता है। तो ये एक जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है, उससे रूहानियत की बहुत सारी बातों को समझना आसान होगा। जैसे फरामीन में है कि आदम से पहले क्या था, और फिर इमाम आलम ज़र की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें पार्टिकल्स हैं, द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स क्या है? तमाम रूहों के ज़र्रात जिस जगह पर, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट कहीं आसमान में है, नहीं, ये जो इंसानी कामिल होता है, आज ज़माने के इमाम में हमारी रूह के ज़र्रात भी हैं और दूसरे तमाम लोगों के ज़र्रात भी हैं, पार्टिकल्स की सूरत में हम सब इमाम में रहते हैं। इसको हम और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेन थीम है जिससे रूहानियत को समझना और बहुत सारे किस्सों को समझना आसान होगा। कहते हैं ना, आदम को फरिश्तों ने सजदा, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और फरिश्ते आदम को सजदा करते हुए गिर गए। अगर आप सजदा करते हैं तो आप कितनी तमीज़ से करते हैं, दोनों हाथ ज़मीन पे रखते हैं, सर ज़मीन पे टेकते हैं, ठीक है, तो सजदा करते हुए आपके मखसूस आज़ा ज़मीन पे लगते हैं, आप बड़ी इज़्ज़त से सजदा करते हैं। लेकिन खुदा कुरान में क्या कहता है? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और फरिश्ते आदम को सजदा करते हुए गिर गए, गिरते हुए सजदा किया। तो ये सचमुच के कोई फरिश्ते नहीं थे, बल्कि दुनिया की तमाम रूहों के पार्टिकल्स थे जो आदम की हस्ती में दाखिल हो गए। क्योंकि आदम कयामत से गुजरा, उसने वर्ल्ड को कॉन्कर कर दिया, तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ एक पार्टिकल की सूरत में आकर उसको सजदा करती है कि हम सब तुम्हारे हैं, तुमने दुनिया को कॉन्कर कर लिया, तुमने दुनिया को फतह कर लिया है। तो आदम के किस्से में भी ये तस्खीर कायनात और आलम ज़र की बात है, और हज़रत सुलेमान का जो किस्सा है वो तो पूरा इसी से मुतल्लिक है। सुलेमान का जो लश्कर था, कहते हैं वो परिंदों का था, इंसान का था और जिन्नात का था। तो परिंदों से मुराद फरिश्ते हैं, परिंदों से मुराद रूहें हैं। सुलेमान के पास, उसके लश्कर में रूहें थीं, फरिश्ते थे, क्योंकि सुलेमान सिर्फ ज़ाहिरी जंग करने नहीं जा रहा था, वो एक बातिनी जंग करता है। हर ज़माने का इमाम, जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान, अभी गिरियाज़ारी में मैंने कहा कि इमाम ने फरमाया कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लम ने लोहे की तलवार से जंग की थी, मगर मैं इल्म की जुल्फ़िकार से जिहाद करूँगा। अब यहाँ पर सूरह फतह है और इसकी पहली आयत है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए रसूल हमने तुमको एक खुली फतह दी है, एक बहुत बड़ी फतह दी है। और रसूल को फतह कब हासिल हुई थी? जब मक्का फतह किया गया था। मक्का एक शहर था, तो वो एक शहर की फतह करने की तारीफ को खुदा नहीं बयान करता, बल्कि तुम्हारे लिए पूरी कायनात फतह हो गई थी, वो तुमने हम हमने तुमको बहुत बड़ी फतह दी, हमने तुमको पूरी कायनात को फतह कर दिया, तो तुमको हमने बहुत बड़ी फतह दी। उस कायनात में कौन कौन कॉन्कर हो गया? रसूल के लिए जिन्नात कॉन्कर हो गए, फरिश्ते कॉन्कर हो गए, और मोमिनीन तो उसके मुरीद हैं ही। तो ये तमाम चीज़ें रसूल के लिए भी कॉन्कर हो चुकी थी, ये रसूल की शान में है कि ए रसूल हमने तुमको बहुत बड़ी फतह दी है। तो मक्का जब फतह हुआ था, मक्का में मुनाफिक लोग भी थे, मतलब उस वक्त तो रसूल के खौफ से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने रसूल की औलाद को, उसकी आल को शहीद भी किया। तो ऐसे लोग थे, मुनाफिक लोग थे, डर के मारे मुसलमान हो गए थे। तो मक्का की सिर्फ एक शहर की फतह, जिसमें अभी लोग मुनाफिक भी थे, खुदा उसको इतनी बड़ी फतह नहीं कहेगा। बहुत बड़ी फतह दी रसूल हमने तुमको। तो रसूल के पर्सनल वर्ल्ड में जब रसूल कयामत से गुजरे, तो उनके लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ फतह हो चुकी थी। इस माना में वो फतह थी। एक और आयत पढ़ेंगे, इसी की आयत नंबर 7 भी है। आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। गालिब का मतलब जो हावी हो जाए सब पर, जो सबको अपने कंट्रोल में कर ले, उसको कहते हैं गालिब आना। तो ये सारे लश्करों पर अल्लाह का कंट्रोल है। तो इस माना में, जिस माना में सुलेमान का कंट्रोल था, ठीक है। और एक और सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 26 है, उसमें खुदा फरमाता है कि ऐसे लश्कर नाजिल किए गए जिसको तुम नहीं देख सकते हो। मुसलमान जब जंग लड़ते थे, तो कुछ जंगों में कहते हैं फरिश्तों ने आकर उनकी मदद की। ये आपने सुना होगा, जंगे बदर में मुसलमानों की मदद फरिश्तों ने की, दूसरी जंगों में भी मुसलमानों की मदद फरिश्तों ने की। खुदा खुद कुरान में कहता है 5,000 फरिश्ते आए थे और उन्होंने तुम्हारी मदद की। तो खुदा फरमाता है ऐसे फरिश्तों का लश्कर आया था जिसको तुमने नहीं देखा। तो इसका मतलब फरिश्तों का लश्कर मोमिनीन की मदद करने को भी आता है। और खुदा कहता है व अनजला जुनूदल लम तरौहा, हमने ऐसा लश्कर नाजिल किया जिसको तुम नहीं देखते थे, मगर उस लश्कर ने तुम्हारी मदद की। इसका मतलब मोमिनीन की मदद करने के लिए फरिश्ते आते हैं, चूँकि वो खुदा का लश्कर हैं। तो खुदा का लश्कर जो है वो मदद भी कर सकता है। तो जंगों में या जब कोई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आता है मौला के मोमिनीन पर, तो फरिश्ते आकर उनकी मदद कर सकते हैं। और ये कुरान से और हिस्ट्री से जाहिर है। मतलब मैं इस बात पर हम एलाबोरेट कर रहे हैं कि खुदा का लश्कर है, ज़मीन पर भी है, आसमान में भी है। ज़मीन पे इंसान होंगे, आसमान में फरिश्ते और रूहें होंगे, और जिन्नात होंगे। मतलब वो ताकतें जो इमाम के लिए काम कर रही हैं, वो इमाम का लश्कर हैं, जिस तरह सुलेमान पैगंबर का लश्कर थे। इमाम का राज है या नहीं है, आज राज मुबारक होवे, हम बहुत बड़ा गिनान पढ़ते हैं ना। और पीर सदरुद्दीन का एक कलाम मैंने देखा, ए जी श्री इस्लाम शाह अमन ने पाया, अने दीदा ते दीन न राज। खुद तो राजा है, हमको भी राज दिया है, ठीक है ना, हमको भी बादशाह बनाया है। तो वो खुद बादशाह है तो हमको बादशाह बनाया है ना। तो इस माना में हज़रत सुलेमान का लश्कर जो है वो ज़माने के इमाम का लश्कर है। ओके, अब ये जो लश्कर है, ये सुलेमान के क़यामत से गुज़रने के बाद ये लश्कर कॉन्कर हो गया और सुलेमान के लिए काम करने लगा। और चूंटियों की वादी में जाना, अजीब व गरीब तावीलात बताई हैं हमारे बुज़ुर्गों ने। कहा है कान जो है वो चूंटियों की वादी है। जब क़यामत बरपा होती है, तो जो कायनात भर की रूहें पार्टिकल्स की सूरत में आती हैं, वो कान से दाखिल होती हैं। वो कान में ऐसा लगता है जैसे चूंटियाँ चल रही हों। ज़रा रूहानी एक्सपीरियंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और आप कभी बहुत अच्छी इबादत करेंगे तो आप कानों पर प्रेशर महसूस करेंगे। ये शुरू की अलामत होती हैं कि अगर आप आगे बढ़े तो आपके कान भी चूंटियों की वादी बन सकते हैं, और यहाँ से मौला का लश्कर दाखिल हो सकता है, आपके लिए कॉन्कर हो सकता है। तो कुल्ली तौर पर, टोटली अगर ये मुमकिन नहीं है, तो पार्शली इसके तजरिबात होते हैं मोमिनीन को, कि आपके कान में कोई चीज़ तेज़ी से आपको दाखिल होती हुई महसूस हो सकती है। तो ये सुलेमान के लिए चूंटियों की वादी ये थी, वरना आप दुनिया में सोच सकते हैं कोई वादी हो उसमें खाली चूंटियाँ रहती हों। जो चूंटियों की वादी है वो कान है, जहाँ से रूहें अंदर जाती हैं। तो सुलेमान का चूंटियों की वादी से गुजरना ये है। अच्छा, अब जो फरिश्ते जिन्नात और ये जो होते हैं, वो इमाम के आलम शख्सी में उसके नौकर बनकर काम करते हैं, उसके स्लेव्स होते हैं, उसके हुक्म पर कहीं भी जाकर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में खुदा के लश्कर ने जाकर दुनिया के हालात को बदला होगा और मदद की होगी, गैबी मदद की होगी। हमको नहीं समझ में आता है, जब मोमिनीन पर कोई मुश्किल आती है, इस्माइली जहाँ भी थे फॉर एग्ज़ाम्पल, या ओवरऑल इंसानियत में, खुदा अपने फरिश्तों को बेच कर भी मदद करता होगा। यकायक हालात बदलते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिस पर हमको यकीन नहीं आता है, यूँ लगता है कि किसी गैबी ताकत ने हालात का रुख मोड़ दिया है। तो खुदा के फरिश्ते जाते हैं, क्योंकि खुदा दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो अपने लश्कर को बेच कर दुनिया के हालात को ठीक कर सकता है। तो जब ये तमाम के तमाम ज़र्रात जो थे वो सुलेमान की हस्ती में दाखिल हो गए, सुलेमान का जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल अपने अपने लश्कर के साथ सुलेमान की हस्ती में खिदमत करने लगे, क्योंकि जब कयामत आ गई और ज़मीन और आसमान में जो कुछ था वो सब का सब सुलेमान के लिए फतह हो गया, तो जिब्राइल भी कॉन्कर हो गया, मीकाइल, और हर फरिश्ते का अपना लश्कर है, इसराइल का एक लश्कर है कहते हैं, तो हर फरिश्ते का अपना लश्कर है, ये तमाम फरिश्ते अपने लश्कर के साथ सुलेमान के लिए काम करने लगे। और कहते हैं कि जिन्नात जो थे वो समंदर में जाकर सुलेमान के लिए मोती निकाल के लाते थे, तो आजकल बड़े बड़े डाइवर्स आ गए हैं, वो खुद जाकर समंदर के अंदर से मोती निकाल के ले आते हैं, तो ये जाहिरी समंदर की बात नहीं थी, रूहानियत के समंदर में गौर व फिक्र करके वहाँ से तावील और हिकमत को ले आते थे, यानी सुलेमान की हस्ती में उसकी अपनी ताकतें उसके लिए जिन्नात का काम करती थी, वो रूहानियत के समंदर में डूब कर उसके लिए रूहानी जवाहिर मोती लेकर आती थी, जिसको वो मोमिनीन के सामने बयान करते थे या तावीलात को समझाते थे। तो गौर व फिक्र के समंदर में गोता लगाकर इल्म व हिकमत के मोतियों को लाते थे। फिर कहते थे जिन्नात आपके लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते थे, तो ये भी आलम ख्याल का जिब्राइल जिंदा हो चुका था, सुलेमान जिस चीज़ को चाहते उसकी एक तस्वीर उसके सामने होती, उसको जाना नहीं पड़ता था, वो तस्वीर उसके सामने हाजिर हो जाती थी। मतलब ये नताइज निकाले गए हैं कि सुलेमान की तरह इमाम आले मोहम्मद इमाम मुबीन का भी एक लश्कर है, और इसका सबूत कुरान में है कि लिल्लाही जनूदु समावाती वल अर्स, उसके लिए आसमान और ज़मीन का लश्कर है, और वो लश्कर लश्करे सुलेमान ही है, कि उसमें रूहें हैं, मोमिनीन हैं, और उसकी अपनी ताकतें हैं। और परिंदे को, रूह को परिंदा इसलिए कहा गया कि रूह कभी भी किसी वक्त उड़ती हुई आ सकती है, उसमें परवाज़ की ताकत है। फरिश्तों को अगर मोमिनीन की मदद करनी थी जंगे बदर में, कहते हैं कि ये सिर्फ 313 थे, सामने 1,000 का लश्कर था, और खुदा किसी जंग का किस्सा कुरान में बयान करता है कि तुम्हारी जान लबों तक आ गई थी उनको देख कर, उस वक्त खुदा ने फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद की। तो फरिश्ते खुदा कब भेजता है? जंग में भेजता है, और किस जंग में, किस जिहाद में भेजता था? जो पैगंबर के हुक्म से होते थे, जो खुदा और रसूल के हुक्म से होते थे। आज जिहाद के नाम पे जो कुछ होता है शायद उसको हम असली जिहाद या जंग समझें या ना समझें, लेकिन जो खुदा और रसूल के हुक्म से होता था, ऐसे जाहिरी जंगों में भी फरिश्तों ने आकर मोमिनीन की मदद की। तो जो बातनी, मूतू कबला अन तमूतू, बातनी जंग है। कहते हैं एक मर्तबा रसूल सल्लम के पास कुछ लोग आए जो एक जाहिरी जंग लड़ के आए थे, तो रसूल ने फरमाया मुबारक हो तुम छोटी जंग लड़ के आए हो। तो चूंकि वो सहाबा काफ़ी मेहनत करके आए थे और वो हैरान हो गए, तो कहने या रसूल अल्लाह तो क्या कोई बड़ी जंग भी होती है? तो रसूल ने फरमाया अपने नफ्स के साथ जो जिहाद करोगे वो बड़ी जंग है, जिहाद अकबर है। तो अपने नफ्स के साथ जिहाद क्या करना है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है और अपने नफ्स को मौत से गुजारना है। मूतू कबला अन तमूतू का वक्त आ गया, तो आपने नफ्स के जिहाद में आप कामयाब हो गए। तो इस जिहाद को जिहाद अकबर क्यों कहा गया है? क्योंकि इस जिहाद का फ़ायदा दुनिया में एक एक रूह को पहुंचता है। आपने सारी रूहों को अपने अंदर लाया, उनको पाक व पाकीज़ा किया, उनको भी इल्म दिया, हर रूह ने आकर यहाँ सजदा किया, हर रूह यहाँ आकर पाक हो गई। खुदा ये अमल बार बार करता है, हर पैगंबर के साथ करता है, हर इमाम के साथ करता है। तो छोटी जंग और बड़ी जंग, तो बड़ी जंग में फ़ायदा सब लोगों को जाता है, वरना इसको बड़ी जंग नहीं कहना चाहिए। छोटी जंग में लोग जाते हैं, तलवार के जख्म खाते हैं, तीर लगते हैं, मौत हो जाती है, मगर खुदा पैगंबर ने कहा मुबारक हो तुम छोटी जंग से वापस आए हो, अभी जंगे अकबर बाकी है। तो लोगों ने पूछा था, तो रसूल ने फरमाया वो नफ्स के साथ तुम्हारा जिहाद है। तो आज हमारी एक कांस्टेंट जिहाद हमारी ज़िंदगी में चलना चाहिए। इस वक्त हम तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालकर इधर आकर बैठकर इल्म के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ये भी तो एक जंग है ना, आपने बहुत सारी मसरूफियात को पीछे डाला है और उसको आप बाद में कोप अप करेंगे। इसी तरह आप जो टाइम निकालते हैं इबादत के लिए, पढ़ने के लिए, ये भी एक जंग है। अपने आप को एथिकल वैल्यूज़ के साथ ज़िंदा रख रहे हैं इस मुल्क में, ये भी एक जंग है। तो मुसलसल एक जंग है मोमिन की, और बिल आखिर इस जंग का फ़ायदा क्या होता है? आप पूरी कायनात को फतह कर लेते हैं और पूरी कायनात जो है वो आपकी हो गई। और अब जो हुदहुद का जिक्र है कि वो जाकर एक मलिका के तख्त को, तख्त की खबर लाता है, तो ये कहते हैं ये सुलेमान की अपनी एक कुव्वत थी, तजस्सुस की कुव्वत थी, जिसके ज़रिए, चूँकि सुलेमान के लिए अब पूरी दुनिया फतह हो चुकी थी, तो उसके अपने अंदर एक तजस्सुस की रूह थी, जिससे उसको पता चला कि दुनिया में एक मलिका है जो कि काफिर मलिका है, वो खुदा को नहीं मानती है। तो कहा गया उसका तख्त ले आओ मेरे महल में। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी बादशाहतें हैं जो खुदा को नहीं मानती हैं, इमाम को नहीं मानती हैं, उनकी बादशाहतें ऑलरेडी इमाम के कंट्रोल में है रूहानी तौर पर। वो रूहानी तौर पर मतलब वो बादशाह, दुनिया का बादशाह खुदा की नज़र में बादशाह नहीं होता है, उनकी बादशाहतें इमाम की बादशाहत में ला कर ज़म कर दी जाती हैं। और ये भी एक पॉइंट है, आपने दो टर्म्स अगर सुने हैं, एक होता है जो इमाम होता है, इमाम के साथ उसके 12 हुज्जतान का तसव्वुर है कि उसके 12 हुज्जत होते हैं जो उसके साथ साथ काम करते हैं। कुछ लोग जाहिर में काम करते हैं, ये मतलब उस वक्त था जब इमाम दरजात को जाहिर करते थे, जैसे पीर होते थे, हम सबको मालूम होता था कि ये पीर हैं। हो सकता है दरजात आज भी हों मगर वो लोगों के सामने ना हों, क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो सितारा नज़र नहीं आता है, मगर सितारा अपनी जगह पर तो होता है। तो अब इमाम जाहिर है तो वो इमाम के बाद के जैसे 313 मोमिनीन हर दौर में होते हैं, तो आज भी 313 मोमिनीन होंगे, मगर उनकी पोजीशन डिक्लेयर्ड नहीं है, अनाउंस्ड नहीं है। लेकिन अगर सूरज निकलता है तो सितारा अपनी जगह पर तो है, नज़र नहीं आ रहा है मगर अपनी जगह पर है। जब सूरज नहीं था, जब इमाम दौरे सतर में थे, तब ये रैंक्स अनाउंस थे कि भाई ये हुज्जतान हैं, ये दाई हैं, और वो दावत का काम करते थे। अभी भी रैंक्स हैं, और अब इमाम उन रैंक्स में बहुत इजाफा करना चाहता है ना। इमाम कहता है तुम सब जाके दाई बनो, तुम सब इस मकाम तक आ जाओ, क्योंकि इस दौर में इमाम नवाजिश करना चाहता है। तो कहते हैं कि जब हुज्जतान डिक्लेयर होते थे उस वक्त दो टर्म्स होती थी, दिन का हुज्जत, रात का हुज्जत। तो जो रात का हुज्जत होता था वो इमाम के मुरीदों में से नहीं होता था, वो दुनिया का कोई मशहूर शख्स होता था जिसके ज़रिए इमाम का नूर काम करता था दुनिया में। आप देखें दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत अजीब व गरीब काम करके गए हैं, उनको इमाम के नूर से ताईद मिलती है, वो इमाम की ताकत से काम करते हैं मगर उनको मालूम नहीं होता है, लेकिन उनसे जो काम इमाम करवा रहा होता है उसके ज़रिए से दुनिया में एक इनकलाब आ सकता है। मिसाल के तौर पर ओबामा अगर एक बहुत ही मजबूत प्रेसिडेंट था, एक ऐसे मुल्क में था जहाँ से वो बहुत इम्पेक्ट कर सकता था दुनिया में, तो हो सकता है उसको अंदर अंदर से कोई ताईद, कोई रोशनी मिलती रही हो। आपको मालूम है क्रिश्चियंस ओबामा के बारे में बहुत अजीब व गरीब बातें करते हैं, या कि ये हज़रत ईसा से कनेक्टेड हैं। और तो मैं मिसाल दे रही हूँ, इमाम दुनिया का इमाम है, इमाम सिर्फ इस्माइलियों का इमाम नहीं है। हम मौला बापा कह के बस उसका दामन पकड़ के मौला हमारे ही दरमियान रहे, ऐसा नहीं है। इमाम पूरी कायनात को संभाल रहा है, वो पूरी कायनात का इमाम है। जो उसको मानता है उसका भी इमाम है, जिसको नहीं मानता है उसका भी इमाम है। हमने दो टर्म्स डिस्कस की थी, इमाम उन नास तमाम लोगों का इमाम, और इमाम उल मुत्तकीन पायस लोगों का इमाम, परहेजगार लोगों का इमाम। तो हमारे लिए इमाम उल मुत्तकीन बनकर वो अपना मौजज़ा दिखा सकता है, क्योंकि हमको पाक करने के तरीके उसने बताए हैं, लेकिन पूरी कायनात के लिए वो इमाम उन नास है, लोगों का इमाम। और जब नास का लफ्ज़ अरबिक में आता है तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है दुनिया के तमाम लोग, तो दुनिया के तमाम लोगों का भी वो इमाम है। तो इस माना में इमाम सबका इमाम है, इमाम सबको सपोर्ट करता है, उसको ओवरऑल दुनिया को एक मंजिल की तरफ लेके आना है, दौरे मारिफत की तरफ लेकर आना है। तो वो कुछ काम अपने मुरीदों से कराता है, कुछ काम दूसरे लोगों से कराता है, वो किसी की रूह से कोई काम ले उसके लिए अजब तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को हुज्जत शब भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने ये जो मलिकाए सबा को लेकर आए थे, तो ये भी उसकी एक तावील की है कि मलिकाए सबा हुज्जताने शब में से भी हो सकती है कि उसके ज़रिए से कोई काम करवाया गया, लेकिन उस माना में उसकी रूह सुलेमान के दरबार में हाजिर थी, उसको नहीं मालूम होगा मगर उसकी रूह सुलेमान के दरबार में थी और उसके ज़रिए से भी सुलेमान जो है वो काम करते थे। ओके, तो हज़रत सुलेमान का किस्सा रूहानी क़यामत का किस्सा है, रूहानी जंग का किस्सा है, पर्सनल वर्ल्ड में ज़मीन और आसमान को कॉन्कर करने का किस्सा है, पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर करने का किस्सा है। जब पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर करके कोई पैगंबर क़यामत से गुजर जाता है तो फिर उसको तमाम तावीलात आ जाती हैं, तो ये तावील का भी किस्सा है, उसको अब तमाम तावीलात मालूम है, इल्म व हिकमत और मारिफत के दर्जात का किस्सा है, इसमें तमाम दुनिया के लोगों को बिल आखिर नजात देने का किस्सा है, और फना फिल इमाम का किस्सा है, और इसके अंदर बहुत सारी ज़ेली और ज़िमनी बातें भी मौजूद हैं। अच्छा, अब इमाम तो बादशाह है, शहनशाह है, और इमाम के पास लश्कर हैं, हम इस बात पे मुतमईन हो गए कि आज इमाम के पास आसमान का भी लश्कर है, ज़मीन का भी लश्कर है, उसके पास जिन्नात भी हैं जो काम करते होंगे और जो मौजज़ात देखते होंगे। ऐसे मुल्कों में जहाँ सालों तक इमाम, कई सदियों तक इमाम ज़ाहरी तौर पर नहीं जा सके थे, क्या हमको नहीं लगता है कि इमाम के बातिनी लश्कर वहाँ पे काम करते थे? वरना वो जमातें कैसे ज़िंदा रहीं, उन जमातों में ये शऊर ये पहचान कैसे रहा। इमाम की नूरानी ताकतें काम करती हैं और इमाम अपनी नूरानी ताकत से दुनिया को एक ख़ास सिमत में लेके जा रहा है। और उस दिन हमने एक बात की थी कि एक ज़माना था कि नूर को बुझाने की लोग कोशिश करते थे, मगर एक ज़माना है कि नूर मुकम्मल हो जाएगा। तो अब इस दौर में इमाम अपने लश्कर के ज़रिए से कायनात को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या बात यहीं तक ख़त्म हो गई? नहीं, इमाम ये मर्तबा अपने मुरीदों को भी देना चाहता है, उनको बादशाह बनाना चाहता है। और इसके लिए रसूल सल्लम की एक हदीस है, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद मेरी इताअत करो ताकि तुम ज़मीन के सलातीन और हक्काम हो जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अपने ख़ानदान को जमा किया और उनसे कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद तुम मेरी इताअत करो ताकि तुम ज़मीन पर बादशाह बनाए जाओ, तुम ज़मीन के सलातीन हो जाओ। सलातीन सुल्तान की जमा है, कि तुमको मैं ज़मीन का हुक्मरान बना दूंगा। एक और हदीस कुदसी में भी खुदा कहता है कि या बनी आदमा अतिनी अज अलू का मिसली, ए बनी आदम मेरी इताअत करो मैं तुमको अपने जैसे बनाऊंगा, इतना अमीर बनाऊंगा कि तुम कभी मोहताज नहीं होगे, इतनी इज्जत दूंगा कि तुम कभी जलील नहीं होंगे, तो और ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि इसके बाद तुम कभी मरोगे नहीं। तो बादशाहत ये जो शाह इस्लाम शाह अमने मलिया अने दीदा ते दीन न राज, ये मौला हमको मिला और दीन का राज भी हमको दे दिया। तो मौला खुद तो बादशाह है और उसने मोमिनीन को भी दीन का राज देने का, बादशाह होना एक बात है लेकिन किसी और को बादशाह बना सकना इससे बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है। तो हज़रत सुलेमान का किस्सा जो है वो एक पैगंबर के किस्से तक महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुलेमान की सल्तनत थी और इसके बाद किसी की सल्तनत नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुरान तालीम की किताब है, तारीख़ की किताब नहीं है, हिस्ट्री की बुक नहीं है, एजुकेशन की बुक है। अगर ये एजुकेशन की बुक है तो इसकी हर आयत में हर किस्से में कोई एजुकेशन होगी जो आज के लोगों से रेलेवेंट होगी और आज के लोग उसमें से कोई सेंस बना सकेंगे, वरना तो ये सिर्फ हिस्ट्री का एक किस्सा होगा कि आपने पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम दिस हैपन्ड एंड दैट हैपन्ड एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का किस्सा है, आपके मौला का किस्सा है, उसकी बादशाहत की तारीफ़ है, उसके लश्कर की तारीफ़ है। और सिर्फ ये तारीफ़ नहीं है कि वो बादशाह है, वो शहंशाह है, उसके पास इतनी नवाजिश है कि वो हमको भी बादशाह और शहंशाह बना सकता है। तो हज़रत सुलेमान की जो किस्से में है सूरह नंबर 5:20 में भी है कि मूसा की कौम से कहा गया कि खुदा तुमको बादशाह बनाएगा, जअलकुम मुलूका, ए लोगो खुदा तुमको बादशाह बनाएगा। तो बादशाह बनाने का वादा है, तो जो मोमिनीन को बादशाह बना सकता हो वो बादशाहों का बादशाह होगा, वो शाहिनशाह होगा। और हज़रत सुलेमान का किस्सा जो है वो हमें इस लिहाज से बहुत रेलेवेंट किस्सा है।